पंचदशी के कुटस्थ दीप प्रकरण का 67 श्लोक है। 67 श्रोत्यर्थम विशदी कुर्मो न तर्कादवच्मि किंचन तेन तार्किक शंकानां अत्र को अवसरो वद। श्रोत्यर्थं विशदी कुर्मो न तर्कादवच्मि किंचन तेन तार्किक शंकानां अत्र को अवसरो वद। बड़ा सुंदर दीपावली की पावन पर्व पर आप स्वयं ज्योति आत्मा को जला रहे हैं। दुनिया तो मिट्टी तेल घृत की दीपक जलाती है, एक हवा की झोंक आया बुझ जाता है, पर आपका ऐसा यह दिव्य ज्योति है, चाहे दुनिया की कैसी भी कितने भी माया का झंझावात आए कुछ नहीं होने वाला है। इसी दीपावली उसमें कुटस्थ की दीपक जला रहे हैं ना, लिखा ना कुटस्थ दीप प्रकरण, कुटस्थ का दीप है और जो दीप है ना वो तो सापेक्ष है, ये निरपेक्ष है। जो कुटस्थ का दीप है निरपेक्ष है। श्रोत्यर्थम विशदी कुर्मो, पहले देखिए अवतरण। ननो कुटस्थस्य जीवेशयोश्च वास्तवत्व अवास्तवत्व साधने श्रुतय एव पठ्यन्ते। पूर्व पक्ष कहता है कि भाई जो कुटस्थ आत्मा है जीवे सयोश्च और जो जीव और ईश्वर है, कुटस्थ तो वास्तव हो गया मतलब पारमार्थिक, और जीव ईश्वर को आपने कह दिया अवास्तव मतलब कि व्यवहारिक है, प्रातिभाषिक है, आभास जन्य माइक है। इस प्रकार से साधन मतलब सिद्ध करने में, साधने का अर्थ है सिद्ध क्रियमाणे, सिद्ध किए जाने पर श्रुतय एव पठन्ते, श्रुतियां पढ़ी जाती हैं। न तर्कै किंचिदपि साध्यते, तर्क से कुछ भी हम सिद्ध नहीं करते हैं। इति आशंक्य, ऐसी किसी को आशंका हो तब बतला रहे कि हम तर्क से भी बतलाएंगे इसको। मोक्षुणाम श्रुत्यर्थ विशदीकरणाय प्रवृत्तत्वात् न तर्कोपन्यास इत्याह। किसी ने कहा कि आप श्रुतियों के बल से ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि कुटस्थ आत्मा पारमार्थिक है, जीव ईश्वर माइक है, परंतु कोई इसमें तर्क नहीं है। तर्क समझते ना, तर्क मतलब हाँ ऐसा लेना अपन। तर्क शब्द जो है ना तर्क संग्रह में जो लिखा है यथार्थ ज्ञान में है, संशय विपर्यय तर्क भेदात। संशय को विपर्यय को तर्क को यथार्थ ज्ञान में गिना है। तो ये पश्चिम जगत के जो दार्शनिक हैं वे तर्क को साध्य मानते हैं और हमारे यहां तर्क को साधन मानते हैं, तो दोनों में कितना अंतर है। जो श्रुति से आगम से सिद्ध वस्तु है उसको समझने के लिए हम लोग तर्क का प्रयोग करते हैं। तर्क यन्ते प्रमेति विषय क्रियन्ते इति तर्कः, वहां तर्क का दूसरा है। तर्क यन्ते प्रमेति विषय क्रियन्ते इति तर्कः द्रव्यादय पदार्थ। तो तर्क संग्रह ग्रंथ में तर्क का अर्थ है द्रव्यादय पदार्थ। उन पदार्थों को युक्ति से जानने के तौर तरीके का नाम तर्क है। अपने यहां मतलब कि भारतीय दर्शन में तर्क बोलते हैं कि युक्ति प्रत्युक्ति के द्वारा किसी चीज को जानने का जो तौर तरीका है ना, उसको तर्क बोलते हैं। और पश्चिम जगत में तर्क से कोई बात पहले सिद्ध कर लेते, उसी को अपने ढंग से मति से उसको मानते। अपने यहां जो है ना, यदि तर्क आगम वेद श्रुति के अनुकूल है तब तो स्वीकृत है, और यदि वेद विरुद्ध है तो अस्वीकृत है। मीमांसा दर्शन में एक सूत्र आता है कि विरोधे त्वनपेक्षम स्यात् असत्य अनुमानम, ये जैमिनीय न्यायमाला का प्रमाणिक सूत्र है। अपने यहां जैमिनीय न्यायमाला है, ब्रह्म सूत्र है। विरोधे त्वनपेक्षम स्यात्, विरोधे तू अनपेक्षम स्यात्, यण कर दो तो बन गया विरोधे त्वनपेक्षम स्यात्। ह्यसति ही अनुमानम, श्रुति से विरोध हो, आगम से विरोध हो तो उस तर्क की उपेक्षा कर दो, अनपेक्ष है। चाहे स्मृति वाक्य हो, तर्क वाक्य हो, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। असति ही अनुमानम, और यदि श्रुति वेद आगम के अनुकूल तर्क है, आपका बढ़िया तर्क है, और हमारे सामने वेद वाक्य आगम वाक्य श्रुतियां नहीं मिल रही हैं, तो अनुमान कर लेना कि ऐसी श्रुति होगी, वेद वाक्य होगा, काल क्रम से लुप्त हो गया, हमारे सामने प्रकाशन में नहीं है, तो अनुमान कर लेना। तो देखो, अपने यहां तर्क को साधन कोटि माना। अब ये लोग तर्क से किसी चीज को सिद्ध करके तब उसको समझते हैं, दोनों मंत्र यही है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई, आप तो आगम प्रमाण से श्रुति के आधार पर सिद्ध कर रहे हैं कि कुटस्थ आत्मा पारमार्थिक है, वास्तविक है, जीव ईश्वर कैसे हैं, अवास्तविक है, मायिक है। आप लोग वेदांत के संस्कारी हैं, आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाती है। ये बात समाज बोलो तो लोग क्या बोलेंगे, पागल है, बताओ। जिंदगी भर हम सुनते आए कि परमात्मा ईश्वर जीव बिल्कुल सही है, और क्या बोल रहे, कुटस्थ वास्तविक है, सच्चा है, परमार्थिक है, और जी ईश्वर को क्या बोल रहे, माइक औपाधिक। तो जल्दी विश्वास नहीं करेंगे बेचारे भी, क्योंकि उनको वेदांत का संस्कार नहीं। इसलिए आज कुटस्थ का दीपक जलाओ, कुटस्थ का मिट्टी के दिए और चांदी के, सोने के, लोहे के तो जिंदगी पर जलाते आए हम लोग, है ना। यह आपका सौभाग्य है कि बंबई में एक मेवा अद्वितीय ऐसी संस्था है, एक मेवा अद्वितीय जिस संस्था से आपको प्रेम पूरी संस्था से अद्वितीय कुटस्थ दीपक का हम लोग दान कर रहे हैं, दान। और ऐसा है कि कितना भी ग्राहक हो, इस खत्म नहीं होने वाला है। मुक्त हाथ से आप भी बांटो, जी श्रोता लोग बांटे, वक्ता लोग बांटे, तो भी ये कुटस्थ दीप हमारा कभी जो है ना छीड़ होने वाला नहीं है, नाश होने वाला नहीं है, न कम होने वाला है। भाई ये जो मिट्टी के दीपक हैं या लोहे के, सोने के, चांदी के, आप बांटेंगे तो बांटते 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 2-4-5 करोड़ फिर बाद में खत्म हो जाएगा, खलास हो जाएगा, समाप्त, सोचना पड़ेगा। परंतु यहां प्रेमपुरी में ऐसी कुटस्थ दीप है, ऐसा दीपक जल रहा दीपावली के पावन पर्व पर, इसको मुक्त हस्त से आप सारी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड से, इंटरनेट से या अपने वाणी से या संगी साथी को, जैसे भी आप कुटर दीप के दीपक व बांटो तो आपको रोशनी करेगा, ऐसी रोशनी जो रोशनी कभी छीण होने वाली नहीं। अरे भाई, दुनिया की रोशनी तो छीण हो जाएगी, जरा सहावा तूफान झंझावात आया या कोई मुख से बच्चा फूंक दिया तो बुझ जाएगा, पर ये जो कुटस्थ दीप है कभी छील होना नहीं। ऐसे एक कुटस्थ दीप को आप जलाना और सबके घर में जलाना, ऐसा नहीं खाली अपने घर में, इसमें कंजूसी नहीं करना क्योंकि ये छेड़ होने वाला नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई आप तो श्रुति के आधार पर बोल रहे हैं कि कुटस्थ वास्तविक है, ईश्वर जीव माहिक है, इसमें तर्क नहीं है। तब सिद्धांती कहता ऐसी बात नहीं है, मुमुक्षुओं के लिए श्रुति अर्थ को विस्तार से समझाने के लिए हम प्रवृत्त हैं, न तर्को उपन्यास, इसलिए हम तर्क के उपन्यास प्रस्तावना नहीं किया हमने। क्योंकि शास्त्रों में विद्वानों ने कहा है श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मंतव्यश्च उपपत्ति भी मत्वा श्रुतम ध्येयम् एते दर्शन हेतवः। सुनना ही है तो कैसे सुने, तो कहते श्रुति वाक्येभ्य, श्रुति के वाक्यों से सुनना चाहिए। दुनियादारी की बातों को सुनेंगे तो व्यथा होगी, विक्षेप होगा, पर श्रुति वाक्यों से श्रवण करना चाहिए। और सुनने के बाद उपपत्ति बोलते तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा मनन करना चाहिए। मत्वा सततम ध्येयम्, मनन करने के बाद उसका ध्यान करे, चिंतन करे बार बार। ध्यान का अर्थ होता है तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम्, तत्र मतलब अधिष्ठान में, इष्ट देवता में, अपने लक्ष्य में, तेल धारा प्रवाहवत, जिस प्रकार तेल की धारा, घृत की धारा, मधु की धारा अटूट होती, टूटता नहीं, पानी का तो टूट जाता है, इसके समान ही हमारे वृत्तियों के प्रवाह का नाम ध्यान है। तो तर्क वितर्क से मनन करने के बाद हमेशा ध्यान मतलब चिंतन करे, इससे क्या होगा तो बताया कि एते दर्शन हेतव, ये चीजें क्या है कि आत्म साक्षात्कार का कारण है। इसलिए यहां पर बोले कि श्रुति वाक्यों से हमने इस बात को यहां बताया। श्रुत्यर्थम विशदी कुरुमो न तर्काद वच्मे किंचन, श्रुति के आधार पर हमने विस्तार से बताया कि भाई कुटस्थ दीप प्रकरण क्या है, कुटस्थ किसे कहते हैं। न तर्काद वच्मे किंचन, हम तर्क से कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में बताया है तर्का प्रतिष्ठानात्, ब्रह्म सूत्र में आया है ना, सूत्र है कि तर्क की प्रतिष्ठा होती नहीं है। आपने अपने कुशाग्र बुद्धि से किसी बात को सिद्ध कर दिया, दूसरा आप सदिक बुद्धिमान आएगा उसका खंडन कर देगा, तो तर्क की अप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं होती। इसलिए शास्त्र के आधार पर बातों को रखना चाहिए। तेन तार्किक शंका नाम अत्र को अवसर वद, इसलिए तार्किक शंका को यहां अवसर मतलब स्थान है ही नहीं। श्रुत्यर्थम इति, हाँ वो जो टिप्पणी है ना उसमें लिखे है कि तर्कात किंचन किमपि वस्तु वयम यतो नय विशदी कुरमति संबंध, एक इति टिप्पणी में अधिक है। ये जो टिप्पणी है ना उसको आप कर लेना, दो नंबर बना लेना, तर्कात के ऊपर एक लिखा उसको दो कर लेना, क्योंकि एक नंबर ऊपर लिखी है, ये आपका सर्वज्ञत्वादि है उसकी एक नंबर है, तर्कात की दो नंबर है, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते इसको, तो आपका बढ़िया प्रिंटिंग है, मतलब कि तर्कात के ऊपर दो डाल देना, तो दो नंबर की टिप्पणी है कि भाई तर्कात किंचन किमपि वस्तु वयम यतो नैव विशदी कुर्म, हम तर्क के द्वारा कोई वस्तु विस्तार से नहीं बदला रहे हैं, बल्कि हम जो है ना श्रुति की आधार पर अपनी बात रख रहे हैं। क्योंकि तर्क तो होता है मनमाना, हेतु वाक से, अपने बुद्धि की कल्पना से, ये हमारे बुद्धि की कल्पना नहीं है, ये अपना सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो कि शाश्वत सनातन और वैदिक है वेद के आधार पर। और वेद किसी व्यक्ति विशेष के मति का उपज नहीं है। वेद क्या चीज है? अनादि अपरिचय है। ये जो है ना कैसा है, तो दृष्टांत दिया कि श्वास प्रश्वास के समान यतो वा इमानि भूत नहीं, यतो निश्वसितम यत एतद् ऋग्वेद सामवेद, उसमें भी आता पुरुष सूक्त में है ना, तस्माद् यज्ञात् सर्वहूत ऋचः सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे, आता है ना। उसी परमात्मा से श्वास प्रश्वास के समान ऋग यजु साम सारे वेद अभिव्यक्त हुए, प्रकट हुए, उत्पन्न नहीं हुए बल्कि प्रकट हुए। श्वास प्रश्वास के समान, श्वास प्रश्वास स्वाभाविक है। देखो हाथ का चलना न चलना ये स्वाभाविक नहीं है, हमारे चेष्टा प्रयास संकल्प विकल्प पर निर्भर करता है कि हाथ को हम आगे बढ़ाएं कि न बढ़ाएं। पैर को आगे बढ़ाने के पहले सोचते हैं कि आगे गड्ढा है कि साफ है, परंतु श्वास प्रश्वास आप चाहे सोए हैं जगे हैं बैठे हैं बात कर रहे, स्वाभाविक रूप से श्वास प्रश्वास चल रहा, अकृत्रिम है। सीधी बात है, सारी क्रिया कृत्रिम है पर श्वास स्वाभाविक है, अपने आप श्वास चल रही है। ऐसे वेद आपके स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है, किसी के बनाए हुए नहीं है। और दुनिया के सारे जो मजहब है ना, किसी व्यक्ति विशेष के मति से उत्पन्न हुए, जैसे इस्लाम है मोहम्मद साहब का, और क्या बोलते जैन 24 तीर्थंकरों के द्वारा, सिख धर्म 10 गुरुओं का संकलन है ना, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के मति का उपज, पर आपका सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष के मति का उपज नहीं है। इसलिए कह रहे कि भाई देखो हम वैदिक बात बता रहे हैं, हम अपने मति की बात तर्क की बात आपको नहीं बता रहे हैं। तथा किम इतत आह, इसलिए इसमें क्या है तब बता रहे हैं। तस्मात् कुतर्क संत्यज्य मोक्षो श्रुतिमाश्रयेत्, श्रुतौ तु माया जीवेशौ करोतीति प्रदर्शितम्। तस्मात् कुतर्कम् संत्यज्य मोक्षो श्रुतिमाश्रयेत्, श्रुतौ तु माया जीवेशौ करोतीति प्रदर्शितम्। पंचदशी कार करे कि भैया ऐसा करो, कुतर्क को त्याग दो, सम लगा दे, बढ़िया से त्याग दो, दोबारा कुतर्क न आए दिल दिमाग में। एक कुतर्क कैसा है कि चूहे के समान इसके छोटे छोटे दांत है और सब बात को कुतरता रहता है, तो कहते त्याग दो। मोक्षु श्रुतिमाश्रयेत, मोक्षु को श्रुति का आश्रय लेना चाहिए। श्रुति में बात बताई है माया जीवेशो, माया है जीवात्मा ईश्वर को बनाती है, इति प्रदर्शितम, ऐसी बात वहां बतलाई गई दिखलाया गया है। मोक्षुणाम श्रुत्यर्थ कृदिशो अनुसंधेय इत्याह, मोक्षुओं को श्रुति के अर्थ को कैसे अनुसंधान करना चाहिए, तब बताया कि श्रुति के अनुसार। श्रुति क्या कहती है? श्रुतिषु जीवेशयोर मायिकत्वम, जी ईश्वर दोनों ये मायिक है, मायाकृत है, मायाकृत मतलब मायोपाधिक है, ऐसा अर्थ करना। मायिक मतलब मायोपाधिक है, जैसे स्फटिक जो लाल है वो लालिमा औपाधिक है, स्वतः तो उज्ज्वल है स्फटिक, पर लालिमा औपाधि के उपाधिकृत है। ऐसे जीवत्व ईश्वरत्व मायोपाधिक है। घट आया तो घटाकाश, मठ आया तो मठाकाश, दंड आया तो दंडाकाश। उपाधि को हटा ले तो आकाश शुद्ध है, उसमें कोई परिच्छेद नहीं, सीमांकन नहीं है। ऐसे माया आने से मायोपाधिक ईश्वर बन गया, अंतकरण आने से अंतकरण उपाधि वाला जीव बन गया, ये दोनों मायिक हैं। इच्छणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशकृता भवेत् जागदादि विमोक्षांतः संसारो जीवकर्तृकः। इक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशकृता भवे जागदादि विमोक्षांतः संसारो जीवकर्तृकः। अब पंदसी को लगाने के लिए पूरा वेदांत होना चाहिए दिमाग में। जो श्रुति वाक्य है ना, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, ये दिमाग में होगा तब बात बैठेगी। उस परमात्मा ने संसार का सृजन किया और फिर क्या किया, उसमें प्रवेश कर गया। वही बात बता रहे कि इच्छणादि प्रवेशांता, पहले इच्छण किया तदैच्छत, ये कहां का मालूम, ऐतरीय उपनिषद का, तदैच्छत उसने इच्छण किया। कस्मान मद रीते स्यात, मेरे बिना कैसे ये सब होगा, तो ऐसा इच्छण करके स एतमेव सीमानम विदार्य, इतया द्वारा प्रापदिति, सीमा मूर्धा वाक का विदरण करके अंदर प्रवेश कर गया। तो देखो वह जो ईश्वर है उसने क्या किया, पहले संकल्प किया एको अहम बहुश्याम, संकल्प करने के बाद बहुत रूप में हो गया, पुनः प्रवेश कर गया। तो इच्छण से लेकर के पंचभूतात्मक जो जगत है स्थूल और चर, या तो ईश्वर कृत है, ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर कृत है लिखा ना, इस कृता ईश्वर ने बनाया, पर कैसे बनाया तो माया के द्वारा, ऐसा लेना। माया ही तो है, पर संकल्प का नाम ही तो माया, तो माया के द्वारा सब कुछ हुआ। जागृदादि विमोक्षांता, आप भी तो माया से सब करते ना भाई, ईश्वर की माया बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी दुनिया खड़ी कर दी, और जीव की छोटी माया अंतःकरण में है तो छोटा सा आविष्कार करता है, मकान दुकान परिवार, थोड़ा सा समाज तैयार करता है, ये जीव की सृष्टि है। जागृत आदि मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब मोक्ष पर्यंत संसार जीव करते का जीव ने बनाया है। दोनों में अंतर यह है, ईश्वर ने संसार तो किया पर करने के बाद मस्त है, जो को विचार के विषय मस्त है, और हम लोग अपनी दुनिया बना के दुखी है, तो आखिर वह मस्त क्यों है। वेदानक में उत्तर दिया कि स एकाकी नैव रे में, वह जो परमात्मा अकेले उसको आनंद नहीं आया, एको महात्मा द्वितीयो स्यात, दूसरा हो जाए संकल्प किया। जैसे हम लोग अकेले होते हैं ना तो मजा नहीं आता है, सोना सोना तो शादी ब्याह हुआ, नाती पोते पर पोते खूब विस्तार हो गया, इसके बाद क्या हुआ लिखा, द्वितीयाद वही भयम भवति, जब विस्तार हुआ तो भय होने लगा कि भाई जो है हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तरह तरह का भय सताने लगा। फिर भय होने के बाद यहां तक तो हम लोग भी पहुंच गए हैं, इसके आगे उसने क्या किया तो उपनिषद में लिखा कि जब भय हुआ तो चिंतन किया कि कस्माद विभेदमी अहम, मैं क्यों भयभीत हो रहा हूं, क्यों मुझे मौत की भय सता रही है, ऐसा चिंतन किया। जब चिंतन किया कदे भयम भी आया, मतलब भय समाप्त हो गया। जैसे प्रजापति ने प्रारंभ में संकल्प विकल्प करके संसार खड़ा किया, संसार खड़े होने के बाद दुखी सुखी होने लगे, भय होने लगा, भय होने के बाद उस परमात्मा ने अपने स्वरूप का चिंतन किया। इसी बात को तरह तरह से समझाते हम लोग कि दुर्गा सप्तशती में आता है ना कि वह जो ब्रह्मा जी वह तपस्या कर रहे थे, भगवान नारायण के कान के मैल से दो असुर प्रकट हुए जिनका नाम था मधु और कैटभ, दोनों ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। तो ब्रह्मा जी वो तो पैदा हुए थे कान के मैल से, परंतु ब्रह्मा जी क्या किए पता है, छिपे नहीं, भाग करके नारायण के शरण में आए। जो पुरुषोत्तम है शेष साई, शेष मतलब की परिशेष अधिष्ठान चेतन, उसकी शरण में आए। जैसे वहां पर आए तो क्या देख रहे हैं कि शेष साई भगवान नारायण विष्णु तो बिल्कुल अपने स्वरूप में समाधि में है, लगे प्रार्थना करने। जब प्रार्थना किए तो निद्रा देवी से मुक्त हुए, कौन मुक्त हुए, विष्णु नारायण। इसके बाद 5000 वर्ष तक पंच वर्ष सहस्राणी बाहु प्रणोधि युद्ध चला। युद्ध के बाद दोनों का उद्धार, उद्धार ऐसे नहीं हुआ, भगवान विष्णु ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, वरदान मांग लो। मधु कैटभ ने कहा तुम मांग लो हमसे, हम बहुत खुश है तुम्हारे ऊपर, तुमने इतने दिनों तक युद्ध किया, हम दो तुम अकेले। भगवान ने कहा अच्छी बात है भाई, हम ही मांग लेते हैं, तुम नहीं मांगते तो प्रसन्न हो तो ऐसा वरदान दो कि तुम दोनों का हमारे यहां तो उद्धार हो, बद नहीं उद्धार हो, कल्याण हो। तब दोनों ने कहा कि वंचिताभ्याम, हम दोनों वंचित हो गए, ठग लिए गए। अब वचनबद्ध होने से क्या करते, तो दिमाग लगाया, सोचे कि पूरे ब्रह्मांड में पानी ही पानी, तो क्या कहा मालूम है ना, ऐसी जगह हमारा उद्धार करो जहां पर कि जल न हो। तो सोचे तो जल सभी जगह क्या करेंगे, भगवान विष्णु ने अपने पैर के जंगे को उठाया, कहा दोनों को कहा सर रख दो, ऐसे उद्धार किया। यह तो लाक्षणिक कथा है, लाक्षणिक सामान्य प्राणी को समझाने के लिए, पर वास्तव में इसका तात्पर्य है कि जो जीव है या जीव ही समझो कि ब्रह्मा के समान संसार में जब दुखी होता है तो दुखी होने के बाद दुखी कैसे होता है, इसी के मधु और कैटभ का अर्थ है कर्म फल राग द्वेष। राग द्वेष का नाम, कर्म फल का नाम है मधु कैटभ। आप जब कर्म करते हैं तो फल होगा, अनुकूल होने से राग, प्रतिकूल से द्वेष होता है, सामने खड़े हो जाते हैं। हमारे कैलाश से महात्मा थे वेद व्रतान जी, बोलते थे आदमी कर्म तो करता खूब मजे से और सामने कर्म आगे खड़े हो जाते कि मुझे तुमने पैदा किया, अब जो है ना मैं तुम्हारे पास आया हूं, हमें जगह दो। तो हमारे ही कर्म का फल है, दूसरे का नहीं, हमारे कर्म का फल है, उसी का नाम राग द्वेष है। अच्छा हुआ तो राग और प्रतिकूल हुआ तो द्वेष। तो राग द्वेष का नाम मधु कैटभ, सामने खड़े हो जाते हम घबराते। तो घबराकर दुनिया के पास नहीं जाने का, कहां जाने का, अधिष्ठान चेतन वेदांत के शरण में, प्रेमपुरी आ जाना आराम से, यहां प्रेमपुरी में उत्तर मिल जाएगा आपको। आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाना। ट्रस्टी लोग तो व्यवस्था करते हैं ना, हमारे गिरीश भाई इनको पूछो व्यवस्था में कितनी मगजमारी होती है। मुझे अनुभव है, आप लोगों का अनुभव भले ना हो, 10 साल लंबी रहे ना कैलाश में, जब उस प्रधानाचार्य पद पर बहुत समस्या आती है, व्यवस्था में सबकी सुननी पड़ती और किसी के जरा विरुद्ध बोल दिया तो बेमतलब का द्वेष, कोई ले आना नहीं देना नहीं, जरा से बहुत बारीकी से व्यवस्था करनी पड़ती, संभालना पड़ता, सबको लेके चलना पड़ता। सबसे कठिन काम व्यवस्था, आपको यह भी नहीं करना, सीधे आकर आराम से बैठ जाना। बैठने के बाद ब्रह्मा जी के समान आपको स्तवन करना है, जैसे ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर शेष भगवान से प्रार्थना किया, तो वहां पर निद्रा देवी जो पलकों पर बैठी थी, ऐसा श्लोक में ना, वह अलग हो गई। यहां भी हमारे आंखों के ऊपर वासना कामना की जो निद्रा है ना, इस निद्रा को हटाने के लिए जब आप प्रेमपुरी में आकर बैठकर अधिष्ठान चेतन की शरण में आते हैं, तो वेदांत से अज्ञान निद्रा दूर होती। निद्रा दूर करने का सबसे सहज तरीका है कि आप रोशनी कर दो, मतलब उजेला कर दो, अपने आप जग जाएगा आदमी। तो जब कुटस दीप की कथा सुनेंगे ना, दीपक उज्जवल हो जाएगा, तो उजेले में ज्यादा नींद नहीं आती है, अंधेरे में तो सबको आती है, आंख अपने आप खुल जाती है। जब कुटस दीप की आप कथा सुनेंगे तो अज्ञान निद्रा अपने आप दूर हो जाएगी। दूर होने के बाद यह जो गीता में पठन, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम्, असंग शस्त्र के द्वारा उस महामाया का वासना कामना का उच्छेद हो जाता है, इसके बाद आप परम आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। तो सारी कथाएं तो घुमा फिरा के लाक्षणिक कही है, पर कुल मिला के आपको उस अधिष्ठान चैतन्य तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए सारी कथा है। पर आपको सौभाग्य है, कुछ परिश्रम नहीं करना, आके सीधा बैठ जाओ, कथा सुन लो, सुनने के बाद विचार करना, इतना ही है। आगे देखिए, तो ईश्वर की सृष्टि है इच्छण से लेके प्रवेश पर्यंत। अब प्रवेश की बात, जीवात्मा ने सृष्टि किया तो भगवान की सृष्टि भगवान को नहीं बांधती है। क्यों नहीं बांधती मालूम है? देखो, भगवान नारायण हमेशा स्वरूप के चिंतन में लगे रहते, क्षीर सागर में लेट करके, और ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर, हंस नीर क्षीर को अलग करता है, तो ब्रह्मा जी अनात्मा को अलग करके आत्मा के चिंतन में लगे रहते, इसलिए उनको भी कोई दुख नहीं, बंधन नहीं। और भगवान शंकर बिल्कुल सीधे कैलाश पर जाकर हमेशा समाधिस्थ रहते। जब त्रिदेव संसार का जो पालनहार हैं, सर्जन करने वाले हैं, उपसंहार करने वाले, तीनों भी अपने स्वरूप के चिंतन में मस्त, ऐसे ही जीवात्मा को करना चाहिए। पर जीवात्मा चार कदम आगे बढ़ जाता है, चार कदम जानते ना, ये तो ठीक है संसार बने, अच्छी बात है, मकान दुकान व्यापार व्यवसाय अच्छी बात है, इसके बिना काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान ने गीता में कह दिया, शरीर यात्रा पे चाहते न देह यात्रा भी चलने वाली नहीं है, बिना कर्म के, क्या श्लोक है, शरीर यात्रा भी बिना कर्म के नहीं चल सकता है, ऐसा भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया। तो यहां तक तो ठीक है, सारा व्यापार व्यवसाय कारोबार करना, परंतु हम लोग अपने स्वरूप को भुला देते, बस यही भूल हो जाती है। सब कुछ करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो मजे से बैठकर एसी चलाकर आंख बंद कर स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, तब तो सार्थक है। पर सारी व्यवस्था बनाने के बाद हम पुनः व्यवस्था में से रचपच जाते हैं कि अपने आप को उसी में भुला देते हैं, यही हमारी भूल है। तो यहां पर विमोक्ष पर्यंत जागृत स्वप्न आदि जीव कर्तृक जीवात्मा ने बनाया, इच्छणादि प्रवेशांताया सृष्टे ईश्वर कर्तृत्व जागृत स्वप्न सुषुप्ति बंध मोक्ष लक्षणस्य संसारस्य जीव कर्तृत्व। टीकाकार कहते हैं कि देखो भाई, इच्छण से लेकर के प्रवेश पर्यंत ईश्वर कर्तृक सृष्टि है, सब मायिक है, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति बंधन मोक्ष धर्म अधर्म पाप पुण्य सब सारे के सारे संसार जीव कर्तृक है। असंग एव कूटस्थ सर्वदा नास्य कश्चन भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम्। असंग एव कूटस्थ सर्वदा नास्य कश्चन भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम्। असंग एव कूटस्थ, कूटस्थ आत्मा बिल्कुल असंग है आकाश के समान, सर्वदा सभी काल में, ये दा प्रत्यय होता है काले दा सूत्र है, काले दा काल अर्थ में दा प्रत्यय होता है, सर्वदा यदा कदा सर्वदा ये सब दा काल अर्थ में होता है, सभी काल में। तो सर्वदा अस्य कश्चन न असंग, कभी भी इसका संग नहीं, असंगत्व नहीं होता है, हमेशा संग रहता है। भवती न अस्य कश्चन अतिशय, न कन्वे करना अतिशय के साथ में, इस असंग आत्मा की किसी के साथ कभी भी अतिशय नहीं होता। अतिशय बोलते हैं जन्म मरण वृद्धि ह्रास, इसका नाम अतिशय है। जैसे कि धन बढ़ने से हम अनुभव करते कि हम बहुत बड़े हो गए, पद बढ़ने से अनुभव होता हम बहुत बड़े हो गए, तो धन से पद से मान आदि से इसमें अतिशय मतलब वृद्धि नहीं होती है, इनके घटने से इसमें न्यूनता नहीं आती है। तो अतिशय का अर्थ है कि क्षय वृद्धि, अतिशय शब्द का होता है क्षय और वृद्धि, इससे रहित है कूटस्थ आत्मा। तीन मनस्येव विचार्यताम, इसलिए अपने मन में बार बार विचार करना भाई मैं कैसा हूं, कूटस्थ आत्मा हूं। इसी बात को लिखा है कूटस्थस्य असंगत्वादिकम असंगत्व चिन्मयत्व आनंदत्वादि मृति जन्मादि लक्षणस्य व्यवहार जातस्य असत्वम च प्रतिपादितम। जो व्यवहारिक जन्मना मरना है या कुछ भी इसमें नहीं है, अतो मोक्षु इमम अर्थम सर्वदा विचार ये इतई प्राय, मोक्षों को हमेशा इसी बात का विचार करना चाहिए कि भाई मैं कूटस्थ आत्मा हूं। तो दीपावली के पावन पर्व पर आप इसका विशेष विचार करना और सभी को मैसेज भेजना कि भाई हमारे मुंबई में जो है ना पूरे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई मुंबापुरी में एक ऐसी संस्था है प्रेमपुरी, ये बिल्कुल कल्पतरु है प्रेमपुरी, कल्पतरु में और कल्प वृक्ष में अंतर है। देखो ओभ्रष्टु छेदने से बनता है वृक्ष शब्द वृक्ष, और तरु शब्द बनता है त्रि संप्रवन तारण्यो धातु से। तो कल्प का अर्थ है कि समर्थ, कल्पु समर्थने धातु है, ऐसा प्रेमपुरी संस्था कल्पतरु है, इस कल्पतरु की नीति आकर बैठ जाओ। तो दिव्य कूटस्थ दीप ऐसी प्रज्वलित होती है जिसके प्रज्वलित होने के बाद जन्म जन्म का, लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्म का जो हमारे चित्त में अज्ञान अंधकार है, जिस प्रकार से किसी गुफा में हजार बरस से अंधेरा है और आप दीपक जलाओ तो गुफा बोलेगा कि भाई देख मैं हजार बरस से कब्जा करके बैठा हूं, मैं आसानी से नहीं जाऊंगा, बोलेगा नहीं बोलने वाला। रोशनी आए की बोरिया बिस्तर लेके अंधेरा भग जाता है। ऐसे ही चाहे लाखों जन्मों का कितना ही बड़ा भारी आपके अंतःकरण की गुफा में कैसा भी अज्ञान अंधकार हो, पाप ताप का, जैसे कुटस्थ दीप आप जलाएंगे, अब जलाना कहा मालूम, प्रेमपुरी में आके जब बैठेंगे और वो कैसी माचिस होती, कैसी तिल्ली होती है, कैसे उसको जलाते हैं, और तब तौर तौर तरीका जब सीखेंगे, वह तौर तरीका क्या है, श्रवण मनन और निध्यासन, इसके द्वारा जब कुटस्थ दीप का प्रज्वलित करेंगे तो आपके दिल दिमाग का अज्ञान अंधकार दूर कर देगा। अज्ञान अंधकार दूर हो गया फिर आप चाहे कितना भी धन कमाओ, धन जानते आत्मधन, दुनिया के सारे धन तो भाई छीन जाएंगे, पक्की बात है 100% की। चाहे कितना भी आप सोना चांदी इकट्ठा कर लो, रुपया पैसा, एक न एक दिन कोई न कोई छीन लेगा, कुछ नहीं तो सरकार बोलेगी इनकम टैक्स लाओ और परेशान। पर हमारे प्रेमपुरी संस्था में एक ऐसा धन मुक्त हस्त से वितरित होता है, प्रातः काल 7:30 से लेकर 8:30, फिर जो है 9:30 दिन भर चलता, बल्कि 2 घंटा तो कर है ही, परंतु 24 घंटा कोई न कोई यहां पर आत्मधन, जिसको बोलते ब्रह्म विद्या, विद्याधम सर्वधनम प्रधानम, उस धन का वितरण यहां पे हो रहा है और वह ऐसा धन है चाहे कितना बांटो कभी समाप्त होने वाला नहीं। तो सबसे पहले कुटस्थ दीप को जलाना और सबको बोलना कि भाई अपने अपने घर में जलाओ, और कुटस्थ दीप जब जल जाए तो बोलना कि अब ऐसा आत्मधन वहां पर ला करके रखो, उसका चिंतन करो। जैसे होता है ना, आप बैठ के क्या चिंतन करके, हमारे घर में इस साल इतना धन आ गया, पहले इतना था, दादाजी के इतना था, पर दादा के इतना था, हमारा इतना है। ऐसे आप बैठकर आत्मधन का चिंतन करेंगे, इस धन से अमरत्व की प्राप्ति होती है, मौत से छुटकारा हो जाता है। तो आज के दिन कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का उद्धार किया था। यह जो आत्मधन है इसके द्वारा ये जो नरक में ले जाने वाले महिषासुर के समान ये जो कामना है काम, इस काम का उद्धार हो जाता है। पर कैसे होगा, जब जीवन में आत्मधन जब आएगा तब जाकर इसके द्वारा उस नरकासुर का उद्धार, इसके बाद आप परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। तो हमारी तरफ से सबको घर घर में प्रत्येक जन जन में कुटस्थ दीप को आप जलाना, कल आज से तैयारी कर लेना, कल जलाना है ना 19 तारीख को, इसे पहले मैं बता दिया कि कौन सा दीपक जलाना है, और सभी को बैठाना, जितने बच्चे कच्चे बड़े बूढ़े संगी साथी मित्र, उनको बोलना भाई ये कौन सा तो मिट्टी का दीपक, चांदी का दीपक, या जो है लोहे का दीपक रखा, अरे बढ़िया कुटस्थ दीप जलाओ, जिसको जलाने से बिल्कुल अंधेरा दूर हो जाएगा। तो आप प्रयास करना, शेष कल सुनेंगे। मदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।